हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 137। फिर अपने मन में कुछ सोचती हुई सुनैना ने एक गहरी सांस भरी और बोली, प्यार हो या नहीं, वो हम दोनों के बीच की पर्सनल बात है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं किसी और की हूँ और किसी को अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दे सकती जो मेरे पति की है। और जितना जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बस इससे ज्यादा मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। सुनैना ने अपनी तरफ से विराज को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विराज दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा रहा। उसने सुनैना की सारी बातें सुनी, लेकिन उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा और ना ही कुछ बोला। सुनैना ने भी उसके जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपनी बात पूरी करके वहाँ से चली गई। ये क्या चल रहा है विराज और सुनैना के बीच? क्या सच में जो सब लोग बोल रहे हैं, सच में इन दोनों का कोई चक्कर? नहीं नहीं, वो तो बस सब लोग ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी देखा, ये दोनों ही कपल जैसा बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। एक तरफ से वहाँ आती हुई पूनम ने सुनैना और विराज को दूर से बात करते हुए देखा, लेकिन उन दोनों की बात वो सुन नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ी दूर थी और वहाँ तब उसे उन दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन सुनैना के वहाँ से चले जाने के बाद विराज ने अपनी आँखों में आए आंसू पहुँचे और अपना कॉलेज बैग उठाकर वहाँ से जाने लगा। तभी पूनम उसके सामने आ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ विराज, आंख में कचरा चला गया है क्या? क्योंकि रो तो तुम रहे नहीं होगे। पूनम ने जानबूझकर ये बात विराज से कुछ इसी अंदाज में पूछी जिससे कि विराज इरिटेट होकर उसे सच बता दे। लेकिन विराज इरिटेट होने के बाद भी अपने आप पर काफी कंट्रोल रखा और पूनम से कहा, हाँ हाँ, वो शायद कुछ चला गया था आंख में, लेकिन अभी अभी ठीक है। और इतना बोलते हुए विराज पूनम ने बाजू से निकलकर वहाँ से चला गया। हाँ, सुनैना ने निकाल दिया होगा ना? विराज को अपने आगे से निकलकर जाते देख पूनम ने सुनैना का नाम लेते हुए ये बात बोली, तो विराज ठिठक कर वहीं पर रुक गया और मुड़कर हैरानी से पूनम की तरफ देखने लगा। 137। विराज पर चिल्लाकर उसे समझाने के बाद सुनैना कॉलेज से निकलने लगी। वो बार बार मुड़कर अपने पीछे देखकर कन्फर्म भी करती रही कि कहीं विराज फिर से उसके पीछे तो नहीं आ रहा। और फिर कॉलेज गेट तक आने के बाद भी जब दूर दूर तक विराज कहीं नहीं दिखा तो उसने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, कुछ तो असर हुआ इतना चिल्लाने और समझाने का, अब पीछे तो नहीं आ रहा वो। और इतना बोलते हुए सुनैना कॉलेज से निकल गई। वो अपनी कार की तरफ ना जाकर सीधे सड़क की तरफ जाने लगी और फिर एक टैक्सी करके टैक्सी वाले को कहीं चलने के लिए कहा और टैक्सी में बैठ गई। 137। नकुल की नैना से फोन पर बात हो चुकी थी। नैना ने उससे वही कहा था जो अक्षत ने उसे नकुल को बोलने के लिए कहा था और वही बात नैना ने सुनैना को भी कॉल करके कही थी। लेकिन नकुल नैना के वहाँ पर ना होने की वजह से काफी परेशान था और उसी परेशानी में वो आज फिर उसी फ्लैट पर आकर ड्रिंक कर रहा था जहाँ नैना रहती थी। नहीं नहीं नैना, ऐसे कैसे तुम निकल गए मेरे हाथ से? कैसे कोई और प्रोजेक्ट मिल सकता है तुम्हें? मैंने और उसने मिलकर तो पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें कोई और काम ना मिले, तो फिर कैसे तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला? और कहाँ हो तुम, कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हारा? नकुल नैना के बारे में सोचता हुआ दोबारा से अपनी बॉटल से ड्रिंक लेने लगा और एक ही बार में पूरी पी गया। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और वो स्क्रीन की तरफ जैसे ही नाम देखा तो उस पर बॉस लिखा हुआ था और वो नाम देखकर नकुल का सारा नशा जैसे हवा हो गया। कांपते हुए हाथों से उसने अपना मोबाइल टेबल पर से उठाया। उसकी लाल आंखों के साथ उसे स्क्रीन अभी भी काफी धुंधली दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरकार कॉल रिसीव कर ली जैसे कि उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो उस वक्त। हेलो सर, नकुल ने कॉल रिसीव करते ही अपने कान से मोबाइल लगाकर कहा, तुम्हारा हाय हेलो सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया है, ये बताओ मेरा काम कब तक होगा? दूसरी तरफ से एक दूसरे आदमी की एकदम भारी और संजीदा आवाज नकुल के कानों में पड़ी तो उसका बचा कुचा नशा भी उतर गया और वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। सर, मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरा काम किया, अब फिर भी वो लड़की आपके हाथ से निकल गई तो इसमें मैं क्या करूँ? ठीक है, तो फिर तुम्हारी कंपनी को भी कोई अगला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें मेरा भी तो कोई फायदा नहीं है। अब अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए किस खुशी में करूं? अरे नहीं सर, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट देने की तो बात फाइनल हो चुकी थी कुछ दिन पहले ही। हाँ, तो किस शर्त पर फाइनल हुई थी ये भी तुम्हें अच्छे से याद ही होगा ना नकुल? हाँ, याद है। और अच्छा, मैं कैसे भी करके उस लड़की को वापस लाऊंगा, लेकिन सर आप ये डील कैंसिल नहीं करिए, वो सारी बातें बाद में ही होंगी, पहले जो बोल रहे हो वो करो। अरे सर, लेकिन एक मिनट, मेरी होगा तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे? उस आदमी की बात पर कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी कॉल डिस्कनेक्ट होने का साउंड उसके कानों में पड़ा और वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके फोन के दो टुकड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोला, शिट, इट्स नॉट गुड, आई हेट यू नैना, वेयर आर यू? 137। दूसरी तरफ आदित्य की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो रही थी और रवि के बोलने पर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था, तो रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य को डॉक्टर के पास जाने के लिए कैसे कहे, क्योंकि आदित्य रवि की कोई भी बात इतनी आसानी से तो कभी नहीं मानता था, और अगर रवि फोन करके यहाँ पर भी डॉक्टर को बुला लेता तो बाद में भी आदित्य उस पर बहुत गुस्सा करता। इसलिए वहाँ से जाने से पहले आदित्य नीचे आया और गीता से बोला कि आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ भैया को? बहुत लापरवाह है वो, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। गीता ने रवि की बात पर उससे पूछते हुए कहा, हाँ ना ध्यान रखते हैं और ना ही किसी और को रखने देते हैं, लेकिन गीता तुम भाभी को हो सके तो इस बारे में बता देना, जैसे ही वो घर वापस आए मुझे लगता है वही आदित्य सर को डॉक्टर के पास ले जा सकती हैं। रवि ने गीता को पूरी बात समझाई और गीता ने भी उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया और फिर रवि वहाँ से वापस चला गया। गीता सुनैना के वापस घर लौटने का इंतजार करने लगी और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो सोची कि शायद सुनैना ही वापस आई होगी या फिर रवि, लेकिन वो दोनों ही नहीं बल्कि स्वीटी अपने इंस्टीट्यूट से वापस आई थी। वो लगभग रोज इसी समय वापस आ जाती थी, लेकिन अभी उसे यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे तो गीता को अब तक स्वीटी की इतनी ज्यादा आदत नहीं थी। क्रमशः